नमस्कार भारत, 28 अगस्त दिन मंगलवार, मैं हूं कुलदीप मिश्र। साल भर चली बातचीत के बाद अमेरिका और मेक्सिको के बीच व्यापार समझौता।
This is something that's very special for our manufacturers and for our farmers from both countries, for all of the people that work.
35A को हटाने की अफवाहों के बाद जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शन, कई घायल। और चलेंगे हिमाचल, जहां कुछ जगहों पर माहवारी के समय महिलाओं को गायों के साथ रखा जाता है।
गौशाला में गर्मी में बाहर चारपाई के ऊपर रसोई में नहीं जा सकते, हम अंदर नहीं जा सकते, कोई मंदिर में नहीं जा सकते, बदबू होती है ना गाय के गोंतर से और गोबर से।
अखबारों की समीक्षा भी होगी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुनिए सर्वप्रिया सांगवान के साथ। अमेरिका और मेक्सिको के बीच साल भर चली बातचीत के बाद एक व्यापार समझौता हुआ है। यह समझौता उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता यानी नाफ्टा की जगह लेगा, जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कड़ी आलोचना करते रहे हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पिन्या नियतो ने इस नए समझौते का स्वागत किया है। म्यांमार ने संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि रखाइन प्रांत और बाकी इलाकों में हुए जनसंहार के लिए देश के सेना प्रमुख और 5 दूसरे बड़े सैन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। इस रिपोर्ट में उन पर युद्ध अपराध, मानवता के खिलाफ अपराध और रोहिंग्या मुसलमानों पर अत्याचार के आरोप लगाए गए हैं। यह रिपोर्ट सैकड़ों साक्षात्कारों पर आधारित है और इसे म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ हुई हिंसा के लिए संयुक्त राष्ट्र की सबसे कड़ी निंदा के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सुरक्षा के वास्तविक खतरों को देखते हुए कहा जा सकता है कि सेना ने लगातार भेदभाव वाली रणनीतियां अपनाई। म्यांमार के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि होदो सुआन ने इस रिपोर्ट को एक तरफा बताया है। उन्होंने जैसा कि हमने शुरुआत से ही फैक्ट फाइंडिंग मिशन के विचार को स्वीकार नहीं किया था, हम इस रिपोर्ट को भी खारिज करते हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात हम पर एक तरफा आरोप है। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की ओर से हम पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कहा जा रहा है। यह रिपोर्ट बांग्लादेश भाग गए लोगों और विपक्षी गुटों से मिली एक तरफा सूचनाओं पर आधारित है। म्यांमार के संयुक्त राष्ट्र प्रतिनिधि होदो सुआन के शब्द। जर्मनी के केमनिट्ज शहर में लगातार दूसरे दिन हजारों की संख्या में दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों की फासीवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों से झड़पें हुई हैं। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर खतरनाक चीजें और पटाखे फेंके गए, जिसमें कई लोग घायल हुए। यह तनाव रविवार को शुरू हुआ था जब सड़क पर हुए एक झगड़े में एक जर्मन शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। इसके आरोप में एक इराकी और एक सीरियाई व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने विदेशियों पर हमले करने शुरू कर दिए। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा है कि जर्मनी में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है जो सड़कों पर नफरत फैला रहे हैं। केमनिट्ज में दोनों तरफ के प्रदर्शनकारियों ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी की। ये थी जर्मनी में प्रदर्शनकारियों की आवाजें। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि सीनेटर जॉन मैकिन के निधन के शोक में व्हाइट हाउस और अमरीका की सरकारी इमारतों में देश का झंडा आधा झुकाया जाएगा। रिपब्लिकन सीनेटर जॉन मैकिन वियतनाम युद्ध के समय एक युद्धबंदी भी थे। ब्रेन कैंसर से पीड़ित मैकिन का शनिवार को देहांत हो गया था। सोमवार को सरकारी इमारतों पर पहले की तरह झंडा फहराए जाने पर अमरीकी राष्ट्रपति की आलोचना भी की गई। अमरीकी राष्ट्रपति ने अपने बयान में कहा है कि नीतियों और राजनीति पर असहमति के बावजूद उन्होंने मैकिन की अमरीका की सेवा का हमेशा सम्मान किया है। यमन में हैजा की महामारी फैलने के समय का अनुमान लगाने वाले एक सिस्टम के अमल में आने के बाद हैजा के मरीजों की तादाद तेजी से घटी है। यह सिस्टम बारिश के आसार और जनसंख्या घनत्व, साफ पानी की उपलब्धता और मौसमी तापमान आदि घरेलू जानकारियों का एक साथ आकलन करके काम करता है। देश में जहां हैजा फैलने की आशंका होती है, उसके नक्शे राहत कर्मियों को दे दिए जाते हैं और वहां हाइजीन किट्स और क्लोरीन की गोलियां बांटने का काम शुरू हो जाता है। माना जा रहा है कि सिस्टम के अमल में आने के बाद यमन में हैजा के मामलों में 95% की कमी आई है। पिछले साल यमन में हैजा से 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी की दिन की पहली सभा नमस्कार भारत। रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल एप्लीकेशन पर भी लाइव, और मैं हूं कुलदीप मिश्र। अमेरिका और मेक्सिको के बीच साल भर चली बातचीत के बाद एक व्यापार समझौता हुआ है। इसे दोनों मुल्कों के बीच व्यापारिक गतिरोध टूटने की एक अहम घटना माना जा रहा है। ये समझौता उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता यानी नाफ्टा की जगह लेगा, जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कड़ी आलोचना कर चुके हैं। मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके पीनिया नियतो ने इस नए समझौते का स्वागत किया, लेकिन ये भी कहा कि उन्होंने उम्मीद की थी कि आखिरी समझौते में कनाडा को भी शामिल किया जाएगा। अमेरिका और मेक्सिको के बीच ये समझौता क्यों इतना अहम है, ब्यौरा सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से मौजूदा नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विरोधी रहे। उन्होंने पिछले दिनों इस समझौते को तोड़ने की बात भी कही, लेकिन सोमवार को आखिरकार समझौते में नए प्रावधानों को लाने के लिए राजी हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस नई डील को दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए बेहतर बताया है।
This is something that's very special for our manufacturers and for our farmers from both countries.
ये हमारे किसानों और कंपनियों और दोनों देशों के लिए बहुत खास है, उन सब लोगों के लिए जो नौकरी चाहते हैं। व्यापार के लिए एक बेहतर प्रस्ताव तैयार हुआ है। ये समझौता क्या है? अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के बीच उत्तर अमेरिका में व्यापार के लिए साल 1994 में नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी नाफ्टा लागू हुआ था। इस समझौते की वजह से उत्पादों के व्यापार में शुल्क कम हुआ, फूड सेफ्टी, बौद्धिक संपदा और विवादों पर समझौते के लिए नियम तय हुए। जब से समझौता लागू हुआ उसके बाद तीनों देशों के बीच व्यापार 3 गुना बढ़ गया। तीनों देशों के राजनीतिक संबंध भी बेहतर हुए थे। इसके तहत सालाना व्यापार 10 लाख करोड़ डॉलर का होता है, लेकिन तीनों ही देश अब इसके प्रावधानों में कुछ बदलाव चाहते हैं। चूंकि तकनीक बढ़ गई है और ऑनलाइन बिजनेस भी शुरू हो चुका है, तो उसे देखते हुए नए प्रावधानों की जरूरत है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि ये एक राजनीतिक विषय भी बना। अमरीका में 2018 में मध्यावधि चुनाव है और मेक्सिको में हाल ही में जनरल इलेक्शन खत्म हुए हैं, इसलिए कई दिनों तक दोनों देशों के बीच तल्खियों का दौर चला। इस नई डील को लेकर मेक्सिको के राष्ट्रपति एनरिके नियतो ने कहा है कि ये नया समझौता मेक्सिको के लिए फायदेमंद होगा।
Sobre los principales temas de importancia para ambos países.
अमेरिका में नई सरकार बनने के बाद हम बिल्कुल आश्वस्त नहीं थे। पता नहीं था कि क्या होगा, खासकर कि अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा के व्यापारिक संबंधों को लेकर। इसमें महीनों की मेहनत लगी है। ये थे राष्ट्रपति एनरिके नियतो के शब्द। इस नए समझौते के मुताबिक 75% उत्पादों का निर्माण दोनों देशों में होगा, जो कि टैक्स फ्री होगा। दोनों देशों में कारों के निर्माण पर भी समझौता हुआ, जिसके मुताबिक 40-45% कार वर्कर बनाएंगे, जिसके लिए उन्हें $16 प्रति घंटा मिलेगा। हालांकि पिछले कुछ वक्त से कनाडा इस समझौते के लिए बातचीत में शामिल नहीं हुआ है। ट्रंप ने कहा कि कनाडा के साथ जल्द ही बातचीत शुरू होगी।
Canada will start negotiations shortly. I'll be calling the Prime Minister.
मैं जल्द ही कनाडा के प्रधानमंत्री को फोन करूंगा, और अगर वो निष्पक्ष होकर समझौता करना चाहेंगे तो हम करेंगे। हमारे कुछ डेयरी उत्पादों पर उन्होंने 300% शुल्क लगा रखा है। हम ये नहीं होने दे सकते हैं। हम उनकी कारों पर शुल्क लगा सकते हैं। ये बहुत साधारण समझौता है और एक दिन में भी खत्म हो सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द। इस समझौते के बाद दोनों देशों के बाजार में उछाल आया है, लेकिन लेबर यूनियन और इंडस्ट्री ग्रुप का कहना है कि अभी इन प्रावधानों को और स्पष्ट किए जाने की जरूरत है।
ब्यौरा सुना रही थी सर्वप्रिया सांगवान।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
भारत प्रशासित कश्मीर में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35A को हटाने संबंधी अफवाहों के बाद कल जगह जगह प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। स्थिति उस वक्त गंभीर हो गई जब यह अफवाह फैली कि भारत के सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 35A को चुनौती देने की अर्जी पर फैसला सुनाया जा रहा है। बाद में सुप्रीम कोर्ट और प्रशासन ने साफ किया कि ये केवल एक अर्जी का मामला है और असल सुनवाई 31 अगस्त को होगी। श्रीनगर से रियाज मसरूर की रिपोर्ट।
पिछले कई वर्ष से कश्मीर की हवा में डर घुल चुका है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी समर्थक कुछ एनजीओज ने कई अर्जियां दाखिल की हैं, जिनमें 1954 में राष्ट्रपति के आदेश द्वारा भारतीय संविधान में दाखिल की गई धारा 35A को खत्म करने की मांग की गई है। दफा 35A को चैलेंज किए जाने के बाद से ही कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया और ये सिर्फ अलगाववादियों का मामला नहीं रहा बल्कि इस आंदोलन में भारत का समर्थन करने वाले राजनीतिक गुट, व्यापार मंडल, छात्र, वकील और सिविल सोसाइटी के संगठन भी जुड़ गए हैं। कल सुबह एक नई अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई तो ये अफवाह उड़ी कि सुप्रीम कोर्ट इस धारा पर फैसला सुनाने वाली है, जिसके बाद श्रीनगर समेत घाटी के कई क्षेत्रों में अचानक हड़ताल हो गई और लोगों ने जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए। दक्षिणी कश्मीर के शोपियान और अनंतनाग जिलों में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लोहे के छर्रे फायर किए, जिसके कारण 13 प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इनमें से 3 की आंखों में छर्रे लगे हैं। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नई अर्जी पर सुनवाई रोक दी और स्पष्ट किया कि धारा 35A को चैलेंज करने वाली कई अर्जियों की सुनवाई एक साथ 31 अगस्त को होगी। अलगाववादी संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने 30 और 31 अगस्त को हड़ताल की अपील की है और लोगों से कहा है कि अगर इस संवैधानिक धारा के साथ छेड़छाड़ की गई तो वो सड़कों पर धरना दें। गौरतलब है जम्मू कश्मीर भारत के दूसरे राज्यों की तरह नहीं है। कश्मीर का भारत के साथ परिग्रहण यानी एक्सेशन हुआ था, जिसके मुताबिक राज्य के कुछ पावर्स को भारत के साथ बांटा गया था। बाद में धारा 35A द्वारा कश्मीरियों की विशेष नागरिकता को सुरक्षित किया गया और इसी धारा के अंतर्गत कोई भारतीय नागरिक जो कश्मीर का पुश्तैनी नागरिक नहीं हो, कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकता, यहां नौकरियों का उम्मीदवार नहीं बन सकता और ना ही यहां की सरकार द्वारा स्कॉलरशिप ले सकता है। कश्मीर की मुस्लिम जनता तो पहले से ही इस मामले पर नाराज है, परंतु अब अल्पसंख्यक सिख और हिंदू वर्ग भी इस आंदोलन के साथ जुड़ रहे हैं। आल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के नेताओं ने धारा 35A के बचाव में श्रीनगर में धरना दिया।
ऐसी साजिशें जम्मू कश्मीर में नहीं चलेंगी और ना होने देंगे। अगर वो तोड़ने की कोशिश करेंगे तो इसका खमियाजा जो है सरकार, सेंटर की सरकार को ही भुगतना पड़ेगा।
कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख एक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एक है और 35 को कायम रखने के लिए आखिरी दम तक जद्दोजहद करते रहेंगे, उसको हटाने नहीं देंगे। बाकी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।
गौरतलब है कश्मीर में पिछले 2 वर्ष से स्थिति लगातार अस्त व्यस्त है। इसी बीच बीजेपी और पीडीपी की गठबंधन सरकार भी गिर गई और राज्य में गवर्नर शासन लागू है। कुछ ही दिन पहले गवर्नर NN वोहरा के 10 वर्षीय कार्यकाल के बाद सत्यपाल मलिक को नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। राज्यपाल ने कल ही प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ विशेष भेंटवार्ता करके इन्हें राज्य की स्थिति से अवगत कराया। रियाज मसरूर, BBC, श्रीनगर।
राजस्थान में पत्रकार के तौर पर काम करने वाले दुर्ग सिंह राजपुरोहित बिहार की जेल में हफ्ते भर बिताने के बाद जमानत पर छूटकर अपने घर पहुंचे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने पटना में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, जबकि दुर्ग सिंह राजपुरोहित का कहना है कि उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों ने इस मामले की जाँच की मांग की है। जयपुर से नारायण बारेठ की रिपोर्ट।
हफ्ते भर की जेल के बाद अपने घर पहुंचे राजपुरोहित हैरान और परेशान है। उन्हें गत 18 अगस्त को बाड़मेर पुलिस ने पटना में दर्ज एक मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया और फिर बिहार ले गई। राजपुरोहित पर आरोप है कि उन्होंने पटना में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की, लेकिन जेल से छूटे राजपुरोहित कहते हैं ना तो वे कभी उस व्यक्ति से रूबरू हुए, ना ही कभी बिहार का मुंह देखा।
सर, मैं कभी पटना गया नहीं, ना बिहार राज्य में मैंने कभी प्रवेश किया। अचानक हुई घटना थी मेरे साथ, मुझे बिना किसी मेरा जुर्म बताए भी मुझे बाड़मेर की पुलिस ने गिरफ्तार किया और पटना जाकर मुझे सौंप दिया गया, मुझे कोर्ट में पेश करके। देखिए, मुझे गिट्टी का कारोबारी बताया गया, मुझे ये बताया गया उस FIR में जो बाद में पता चली कि मैं गिट्टी का कारोबारी हूँ और मैंने उनको एक व्यक्ति को, राकेश पासवान जो परिवादी जिसका नाम बाद में सामने आया, उसको मैंने राजस्थान में काम करवाया। पटना जाकर उसके साथ अलग अलग दिनांक में जाकर मैंने उनके साथ मारपीट किया, जबकि ये कुछ नेताओं के द्वारा जो मुझे लगातार परेशान कर रहे थे, जो लगातार मुझे धमका रहे थे और 2 महीने पहले मेरे पर फायरिंग का प्रयास हुआ।
राजपुरोहित ने BBC से कहा उनकी खबरों से सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेता और व्यवस्था के ऊंचे ओहदे पर बैठे कुछ लोग नाराज थे, लिहाजा सबक सिखाने के लिए उन्हें मुकदमे में फंसा दिया गया। इस घटना की तीखी प्रतिक्रिया हुई है। पत्रकार संगठनों और राजपुरोहित समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है और जांच की मांग की है। सरकार चुप थी, लेकिन पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अपने स्वर मुखरित किए हैं। बाड़मेर से सांसद रहे BJP नेता मानवेंद्र सिंह खुद एक पत्रकार रहे हैं। वे कहते हैं देश में कोई इमरजेंसी नहीं लगी है, लेकिन फिजा में खौफ का माहौल है।
दूर सिंह को फंसाया जा रहा है, मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं स्वयं पत्रकार रहा हूँ, पर ये तो एक उदाहरण है कि जिसे पत्रकार को दबाया जा रहा है। मैं नहीं कहूँगा कि आपातकाल लगा है, परंतु जो भय है पत्रकारों में, ये भय दूर करना हमें सभी राजनेताओं का कर्तव्य बनता है, हमारा दायित्व है। प्रजातंत्र में स्वतंत्र पत्रकारिता अनिवार्य है। जब तक पत्रकार स्वतंत्र नहीं होंगे तो प्रजातंत्र भी सफल नहीं होगा।
बाड़मेर से कांग्रेस विधायक मेवाराम जैन इस घटना को मीडिया को डराने का एक कदम बताते हैं।
जो प्रकरण हुआ है पूरी मेरे ख्याल से वो गलत हुआ है, इसके साथ अन्याय हुआ है, न्याय जांच होनी चाहिए और उच्च अधिकारी इसको देखें कि इस तरह की घटना जो जहां कोई पटना वो कभी गया भी नहीं, जिसको जानता नहीं, और ये जिस तरह से मैनेज होकर किया गया है, ये सरासर गलत हुआ है, इसके साथ अन्याय हुआ है और इस पर जांच होनी चाहिए और माननीय न्यायालय इसका देखते अच्छी तरह से देखे क्यों किस तरह से ये कैसे दर्ज हुआ और कराने वाले कौन है।
बाड़मेर के पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने बीबीसी से कहा, पुलिस ने पटना से मिले वारंट की तामील की है, इससे ज्यादा वे कुछ नहीं जानते। इस मामले में जन्नत की हकीकत सबको मालूम है, लेकिन कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। यूं राजस्थान के सरहदी जिले बाड़मेर और बिहार के पटना में ना तो कोई साम्यता है ना ही नजदीकिया, लेकिन पटना से पहुंचे कागज ने इन दूरियों को पल भर में पाट दिया। नारायण बारेठ, बीबीसी जयपुर।
मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां जन सुनवाई के लिए कलेक्टर के पास पहुंचे एक बुजुर्ग को धारा 151 के तहत 4 दिन के लिए जेल भेज दिया गया। कलेक्टर ने बुजुर्ग पर अपशब्दों का प्रयोग करने का आरोप लगाया है, जबकि बुजुर्ग का दावा है कि वो तो बस अपने गाँव की सड़क बनाने की फरियाद लेकर पहुंचे थे। भोपाल से शुरह नियाजी की रिपोर्ट।
पिछले मंगलवार को नरसिंहपुर कलेक्टर अभय वर्मा की जनसुनवाई थी। इस जनसुनवाई में जिले के गांव खुरपा से चीलाचौन गांव की सड़क बनाने की गुहार लेकर 61 वर्षीय पी के पुरोहित पहुंचे थे। कई जगह गुहार लगाने के बाद पुरोहित जनसुनवाई में नरसिंहपुर कलेक्टर अभय वर्मा के सामने पहुंचे। पुरोहित का कहना है कि जनसुनवाई में उनका आवेदन लेकर कलेक्टर ने उन्हें लोक निर्माण विभाग में भेज दिया। उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, इस वजह से वे वापस कलेक्टर के पास पहुंचे और उनसे बात की, लेकिन दोबारा आने की वजह से कलेक्टर नाराज हो गए और उनको डांटने लगे। पुरोहित का कहना है कि कलेक्टर ने जब उनसे कहा कि सड़क एक दिन में नहीं बन सकती तो उन्होंने बताया कि यह मामला कई महीनों से लंबित है। इसके बाद कलेक्टर गुस्से में आ गए और बहस करने की बात करते हुए पुलिस को बुला लिया और पुरोहित को थाने भेज दिया। इसके बाद पुरोहित को धारा 151 के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 4 दिन तक उनकी जमानत नहीं होने दी गई। रिहा होने के बाद पी के पुरोहित ने कलेक्टर अभय वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पी के पुरोहित किसान हैं, इससे पहले भी वह सड़क की शिकायत सीएम हेल्पलाइन सहित कई जगहों पर कर चुके हैं। पी के पुरोहित ने इस मामले के बारे में बताया,
मैं बहुत परेशान होते रहा, सबको मैंने सभी ने बोला 151 में तुमको एक दिन दो दिन भी नहीं, मेरे को 4 दिन जेल भेजा, मैं इतना परेशान हो गया। मैं बुजुर्ग आदमी एक किसान होने के नाते मेरे साथ में ये व्यवहार हो रहे हैं तो बाकी लोगों के साथ में क्या होगा। मैं तो उस दिन से ऐसा लगा कि मैं अभी जिंदा नहीं रहूंगा, मेरे को भगवान बचा ले। मैं बड़ी मुश्किल से 4 दिन के बाद गांव से जेल से बाहर चूका। मैं वो उसका न्याय चाहता हूँ, मेरी टीवी फुटेज मंगाई जाए उस दिन की, जिस दिन की जनसुनवाई थी 21-8 की, जब जनसुनवाई में मैंने अगर कुछ गलत शब्द बोले हो तो प्रशासन मेरे साथ में जो सजा देगा उसको मैं स्वीकार करने को तैयार हूँ।
वहीं इस मामले के तूल पकड़ने के बाद कलेक्टर अभय वर्मा ने अपने बचाव में कहा कि किसान जब जनसुनवाई में आया था उस वक्त वह शराब पिए हुए था और काफी अपशब्दों का प्रयोग कर रहा था।
वो नशे में था, उसकी हालत ठीक नहीं थी और इस कारण उसे थाने भेजा गया पुलिस कार्रवाई के लिए। मैंने उसे काफी समझाया लेकिन वो नशे समझने में तैयार ही नहीं था। शुरू से ही मतलब ये वहाँ गाली गलौज, हुड़दंग करना, धमकाना, लोगों को मतलब अपशब्दों का उपयोग करना कर रहा था। उसके बाद मेरे पास आया वो, मैंने उसे कुछ शिकायतें थी सड़क बनाने से संबंधित, मैंने कहा कि इसमें भी एस्टिमेट बनेगा, उसके बजट एलोकेशन होगा। उसका कहना था कि नहीं, आज ही वर्क ऑर्डर जारी किया जाए, पैसे भी जारी किए जाए, सड़क बनना बहुत जरूरी है।
पी के पुरोहित अब कलेक्टर के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं। उन्होंने इसकी शिकायत सोमवार को पुलिस अधीक्षक से भी की है। उनका दावा है कि अगर वह गलत निकलते हैं तो किसी भी तरह की सजा के लिए तैयार हैं।
मैं इसकी रिपोर्ट हमारे एसपी महोदय को मैंने रिपोर्ट की है कि मेरी डीएनए टेस्ट कराया जाए, मैं अगर शराब पीता हूं तो, और नहीं तो कलेक्टर महोदय साहब ने जो मेरे साथ अन्याय किया है उसकी पूरी जानकारी निष्पक्ष रूप से किया जाए, और वो निष्पक्ष रूप से जब ही होगी, जब कलेक्टर महोदय यहाँ नहीं रहेंगे तभी निष्पक्ष रूप से होगी, और मेरी पूरी 21 तारीख की मेरी सीसी फुटेज मंगाई जाए और मेरी जांच कराई जा रही
है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, प्रदेश में अघोषित आपातकाल का नजारा। नरसिंहपुर में खस्ताहाल सड़क को अमेरिका जैसे बनाने की मांग को लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा जन सुनवाई में की गई मांग पर बदले में उन्हें मिली जेल। किसान, गरीब, युवा, बेरोजगार हो या आम आदमी, शिवराज सरकार में अपनी आवाज उठाने का हक किसी को नहीं। इस मामले से प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। शुरह न्याजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
और अब वक्त है दिल्ली से छपने वाले अखबारों की समीक्षा का, और स्टूडियो में मौजूद हैं सर्वप्रिया सांगवान। बताइए सर्वप्रिया।
कुलदीप, आज के अखबारों की समीक्षा मैं अर्थव्यवस्था से जुड़ी खबरों से करना चाहती हूं। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है जिसमें सांसदों की कमेटी का मत है कि जो RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नीतियाँ सरकारी बैंकों में बढ़ते कर्जे मतलब NPA की स्थिति को उन्होंने और बुरा बना दिया है RBI की नीतियों ने। इन नीतियों की वजह से बैंक डर के माहौल में काम कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स नहीं बना पा रहे हैं। नाम ना लिखने की शर्त पर कमेटी के एक सदस्य ने कहा है कि वे अपनी रिपोर्ट में सुझाव देंगे कि नियमों में थोड़ा ढील दें और सरकारी बैंकों को 5,00,000 करोड़ रुपए तक का कर्ज देने की छूट दें। वहीं दैनिक जागरण की एक खबर है कि 34 बिजली कंपनियों के दिवालिया होने का खतरा है। RBI ने 12 फरवरी 2018 को एक सख्त दिशा निर्देश दिया था कि जो भी कंपनी 180 दिनों तक कर्ज नहीं चुकाती है उनके खिलाफ हुए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत दिवालिया प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए।
जी, इस संबंध में विस्तृत खबर bbchindi.com की वेबसाइट पर भी।
जी हाँ, और इन्हीं कंपनियों पर 1.77 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी बकाया है। तो और इसके अलावा एक जो खबर है, दंगों में 4 कांग्रेसियों के नाम सुने मैंने भी सुने, ये बात कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, जो 1984 दंगों के में कांग्रेस के नेताओं के इन्वॉल्वमेंट की बात बता रहे हैं। इसके अलावा जो आपको वो एक फोटो याद होगा जहां पर एक व्यक्ति को, कश्मीरी को जीप पर बांधकर सेना ने अपना बचाव किया था, और
मेजर गोगोई
अब उन के ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश हुए हैं। उन पर उन्हें एक जांच में दोषी करार दिया गया है। उन पर एक युवती को होटल के अपने कमरे में ले जाने की कोशिश करते पकड़े गए थे और उन पर फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की गई थी। अब ये जांच पूरी कर ली गई है और उन्हें इसका दोषी पाया गया है। इसके अलावा एक और खबर आ रही है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब यहाँ अपने यहाँ न्योता देने वाले हैं। अगले महीने संघ प्रमुख मोहन भागवत की 3 दिन की व्याख्यान श्रृंखला में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और माकपा महासचिव सीताराम येचुरी सहित कई अन्य को न्योता दिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर लिखी गई है।
जी, यही खबर अमर उजाला ने भी छापी है। बहुत शुक्रिया सर्वप्रिया सांगवान अखबारों की समीक्षा के लिए।
सनसनी नहीं, विश्वसनीयता का दम,
बीबीसी हिंदी।
हिमाचल प्रदेश का कुल्लू मनाली वो जगह है जिसका नाम सुनते ही आंखों के सामने बादलों से ढके पहाड़ नजर आते हैं। यहाँ दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन कुल्लू की एक दूसरी तस्वीर भी है जो महिलाओं के मासिक धर्म यानी माहवारी के समय उनके साथ होने वाले बर्ताव से जुड़ी है। कुल्लू के पहाड़ों में बसे गाँव में बहुत सी औरतें माहवारी के कुछ दिनों में गौशाला में सोती हैं। औरतों को परिवार से अलग गोबर के बीच सोना पसंद नहीं, लेकिन उनके पास कोई चारा भी नहीं। बीबीसी संवाददाता सुमिरन प्रीत कौर की रिपोर्ट।
कुल्लू मनाली एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर से पर्यटक आते हैं, लेकिन यहाँ की एक दूसरी तस्वीर भी है। कुल्लू के पहाड़ों पर जो गांव बसे हैं, वहाँ कई महिलाएं ऐसी प्रथा का पालन करती हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। हिमाचल के कुल्लू के जाना गांव की बिमला देवी एक बच्चे की माँ है और मासिक धर्म के वक्त वो अपने घर के भीतर कदम तक नहीं रख सकती। बच्चे और पति से अलग घर के नीचे गौशाला में सोती हैं।
सर्दी में अंदर सोते हैं गौशाला में, गर्मी में बाहर चारपाई के ऊपर, रसोई में नहीं जा सकते हम, अंदर नहीं जा सकते, कोई मंदिर में नहीं जा सकते। 3 दिन में गंदा मंद है ना, 3 दिन के बाद नहीं, बदबू होती है ना गाय के गोंतर से और गोबर से।
यहाँ के लोगों का विश्वास है कि मासिक धर्म के दौरान अगर औरत घर में आ गई तो घर अपवित्र हो सकता है, देवता गुस्सा हो सकते हैं। कुल्लू के धर्मोट गाँव में नई दुल्हन के आने की खुशी मनाई जा रही है। कुछ महीने पहले प्रीता देवी भी शादी करके इस गांव में आई थी। BA पास प्रीता के लिए इस प्रथा का सामना करना आसान नहीं था। वो कहती हैं कि ये पुराने रीति रिवाज हैं जिनका पालन करना होगा।
जब हम नए नए आए एक दो महीने तो मतलब बहुत मुश्किल हुआ, नींद ही नहीं आती थी पूरा पूरा दिन, ऐसे रात को ऐसे बैठना, ना देवता की रीति हो उनके, ऐसे अंदर जाओगे तो देवता मना नाराज हो जाएंगे।
सरकार नारी गरिमा कार्यक्रम के जरिए जागरूकता लाने की कोशिश कर रही है। दरअसल गौशाला में रहने से कई बीमारियां हो सकती हैं और लोगों को ये समझाने का प्रयास हो रहा है। कुल्लू जिले के डिप्टी कमिश्नर यूनुस का कहना है कि ये एक साल का पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस प्रथा से कहीं ना कहीं लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है, तो उन्होंने बहुत से लोगों से बात की। कुछ पुजारियों और पुरोहितों का समर्थन भी उन्हें मिला।
जो डिग्निफाइड लाइफ है वो सबका राइट है। When I met with...
सम्मान से जीने का अधिकार सबको है। जब हम कुछ पुरोहित और पुजारियों से मिले तो उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए पॉजिटिव रिस्पांस दिया।
हम उस गांव में पहुंचे जहां इस जागरूकता कार्यक्रम का आगाज जनवरी 2018 में हुआ था। बेशक अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है, लेकिन इस बारे में बातचीत होने लगी है और अब मर्द भी इस पर खुलकर बात कर रहे हैं। जाना गांव के पुजारी जगत राम ने कहा कि अब गांव में जागरूकता है।
इनके लिए क्या, भगवान के लिए तो कोई भी कैसा भी आया आदमी आ जाए, इनका तो सब बराबर है जी।
इन सब गांव में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी तरह का बदलाव नहीं चाहते।
वो बदलाव नहीं चाहते हैं, हमारे देवते मार को नाराज होता है।
लोगों की सोच बदलने में वक्त जरूर लगेगा, लेकिन शुरुआत हो चुकी है।
अच्छा, बेटी होगी तो मेरी, मैं तो बिल्कुल नहीं, अपने साथ ही रखूंगी, अंदर ही रखूंगी।
लोगों का मानना है कि नई पीढ़ी अपने साथ बहुत से बदलाव लेकर आएगी। सुमिरनप्रीत कौर, PBC, कुल्लू।
इंडोनेशिया में चल रहे एशियाई खेलों में कल भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने भारत को एक और स्वर्ण पदक दिलाया। कई और स्पर्धाओं से भारत के लिए अच्छी खबरें आईं। ज्यादा जानकारी के लिए मैंने संपर्क किया इंडोनेशिया में एशियाई खेलों को कवर कर रहे पत्रकार अमनप्रीत सिंह से।
कल भारत ने एक स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते। नीरज चोपड़ा का एक ऐतिहासिक प्रदर्शन था। भारत के किसी भी जेवलिन थ्रोअर ने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता था, लेकिन उन्होंने न केवल गोल्ड मेडल जीता बल्कि नेशनल रिकॉर्ड को भी ध्वस्त किया। पहले का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम था, 87.83। और कल उन्होंने जो भाला फेंका ये दूरी तय की उन्होंने 88.06। उसके बाद 3 रजत पदक आए 400 मीटर हर्डल्स में। धरुण अय्यासामी, ये तमिलनाडु के एथलीट हैं, उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए ये पदक जीता, 98.96 ये उनका टाइमिंग रहा। उनके अलावा महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपल चेज में सुधा सिंह ने रजत पदक जीता। उनके बाद लॉन्ग जंप में नीना वाराकिल, उन्होंने भी रजत पदक जीता। इन तीनों मेडल्स के बाद में जो सबसे बड़ी उपलब्धि आई टेबल टेनिस से, एशियन गेम्स के इतिहास में भारत ने कभी भी मेडल नहीं जीता है, लेकिन कल भारत की पुरुषों की टीम ने जापान को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। जो भी टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश करती हैं उनका पदक पक्का हो जाता है, तो ये बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि थी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन एशियन गेम्स में यहाँ पर टेबल टेनिस के पावर हाउसेज हैं, जापान है, चाइना है, ऐसी फील्ड में आप पदक तक पहुंचे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है।
अब मंगलवार को जो मुकाबले होने वाले हैं वो कौन से मुकाबले हैं जिनसे भारत के खेल प्रेमी पदक की उम्मीद रख सकते हैं, जिन पर सबकी नजरें रह सकती हैं?
आज के दिन में दो पदक तो पक्के ही हैं, क्योंकि आज पीवी सिंधु खेलेंगी महिलाओं के एकल वर्ग का फाइनल वर्ल्ड नंबर 1 ताइजू जिन के खिलाफ। सिंधु पहली भारतीय महिला है जो एकल वर्ग के बैडमिंटन प्रतिस्पर्धा में फाइनल में पहुंची है, तो ये काफी दिलचस्प मुकाबला होगा, क्योंकि ताइजू जिन बहुत ही अच्छी खिलाड़ी है, सिंधु को पिछले 5 मैचों में हरा चुकी हैं। आज देखते हैं कि सिंधु कैसे उनका मुकाबला करती हैं। इसके अलावा आज भारत की 2 तीरंदाजों की टीमें फाइनल में खेलेंगी, पुरुषों की कंपाउंड टीम और महिलाओं की कंपाउंड टीम। दोनों ही टीमों की प्रतिद्वंदी कोरिया है। कोरिया तीरंदाजी में सबसे सर्वश्रेष्ठ देश माना जाता है। देखना है कि भारत की पुरुषों की टीम अपना टाइटल डिफेंड कर पाती है कि नहीं, क्योंकि पिछली गेम्स में भारत की पुरुषों की टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। भारत की महिलाओं की टीम इस समय विश्व में नंबर 1 टीम है, लेकिन कोरिया आसान टीम नहीं है। मुकाबला काफी दिलचस्प होगा, भारत का मेडल तो लेकिन पक्का ही है। इसके अलावा हॉकी में आज भारत की पुरुष टीम का मुकाबला होगा श्रीलंका से।
जकार्ता से अमनप्रीत सिंह बता रहे थे कि आज एशियाई खेलों में नजरें किन स्पर्धाओं में रहेंगी। भारत के अब तक 8 स्वर्ण, 13 रजत और 20 कांस्य पदक हो चुके हैं और वो पदक तालिका में 9वें स्थान पर है। कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुनिए सर्वप्रिया सांगवान से।
अमेरिका और मेक्सिको के बीच साल भर चली बातचीत के बाद एक व्यापार समझौता हुआ है। यह समझौता उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता यानी नाफ्टा की जगह लेगा। म्यांमार ने संयुक्त राष्ट्र की उस रिपोर्ट को खारिज किया है जिसमें कहा गया था कि रखाइन प्रांत और बाकी इलाकों में हुए जनसंहार के लिए देश के सेना प्रमुख और 5 दूसरे बड़े सैन्य अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए। जर्मनी के केमनिट्ज शहर में लगातार दूसरे दिन हजारों की संख्या में दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों की फासीवादी विरोध प्रदर्शनकारियों से झड़पें हुई हैं। बीबीसी समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। अगला प्रसारण दिन भर, समय आप जानते हैं 7:30 बजे। इस कार्यक्रम में स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। और देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com के साथ। और फिलहाल कुलदीप मिश्र को दीजिए अनुमति। नमस्कार।